इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाया। कार में बैठते ही संजय ने कार स्टार्ट कर दी थी। दोनों पीछे की सीट पर बैठी थीं। थोड़ी देर में वे एयरपोर्ट पहुंची। संजय कार से बाहर निकलकर वहीं खड़ा हो गया। इप्सिता और नंदिनी भी कार से बाहर निकलीं। एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही नंदिनी धीरे धीरे अंदर जाने लगी। नंदिनी को इतना धीरे चलते देख इप्सिता ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना धीरे क्यों चल रही हो, जल्दी चलो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। नंदिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, अभी मेरी फ्लाइट में काफ़ी समय है, तो मुझे इतनी जल्दी जाने के लिए क्यों कह रही हो, बोर हो गई हो क्या मुझसे, बस थोड़ी देर मेरे साथ और बिता लो, उसके बाद तो मैं तुमसे एक महीने बाद ही मिलूंगी। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर उदास हो गई और धीमी आवाज में बोली, नहीं, हम तुम्हें जल्दी नहीं भगा रहे, हम तो बस ये सोच रहे थे कि तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो, और हम तुमसे कभी बोर हो सकते हैं क्या। इप्सिता को उदास देख नंदिनी ने उसे साइड से गले लगाते हुए कहा, अरे तुम उदास मत हो, मैं इतना धीरे इसलिए चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, कोई मुझे सी ऑफ करने आ रहा है। इप्सिता थोड़ी उलझन में पड़ते हुए बोली, कौन आ रहा है, तुम्हारी मौसी जी या उनके घर से कोई। नंदिनी ने सिर पीटते हुए कहा, ओ गॉड, मौसी जी मुझे छोड़ने क्यों आएंगी, कैसी बातें करती हो तुम भीषु। इप्सिता ने नंदिनी की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, हमें क्या पता, तुमने हमें बताया ही नहीं, चलो अब सीधे बताओ कौन आ रहा है तुम्हें सी ऑफ करने। इप्सिता की ये बात पूछते ही उनके पीछे अभिमन्यु की कार आकर रुकी और अभिमन्यु कार से उतरा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीछे मुड़कर खुद देख लो क्योंकि मुझे नहीं लगता अब बताने की जरूरत है। अभिमन्यु व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक जीन्स और साधारण कपड़े पहनकर आया था। उसने नंदिनी को देख लिया था इसलिए वो दोनों की तरफ आ रहा था। उसे देखकर नंदिनी खुश होते हुए बोली, मेरे जीजू आ रहे थे मुझे छोड़ने। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, इप्सिता पीछे मुड़कर देखने लगी। अभिमन्यु को देखते ही इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, नंदिनी तुमने बुलाया है ना मिस्टर अभिमन्यु को यहाँ पर। नंदिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने जीजू से इतना ही कहा था कि मैं जा रही हूँ, जीजू ने खुद कहा कि वे मुझे सी ऑफ करने आएंगे, अब अगर वे खुद आने के लिए कह रहे थे तो मैं मना कैसे करती, बैड मैनर्स होते हैं ना। नंदिनी ने मासूम सा चेहरा बनाया। इप्सिता गुस्से से बोली, नंदिनी तुम हमेशा ही ऐसा करती हो। इप्सिता कुछ और बोल पाती उससे पहले ही अभिमन्यु उनके पास पहुंच गया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे उसका ड्राइवर एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और वो गुलदस्ता अभिमन्यु को दिया। अभिमन्यु ने वो गुलदस्ता नंदिनी को देते हुए कहा, दिस इज फॉर यू नंदिनी, आप जा रही हैं तो हमने सोचा हम आपसे मिल लें, और इप्सिता आप कैसी हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा और मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोली, हम ठीक हैं। नंदिनी ने इप्सिता को गले लगाते हुए कहा, अच्छा अब मैं आप दोनों से डायरेक्ट आपकी शादी पर मिलूंगी, तब तक हम फोन पर कनेक्ट रहेंगे, और ईशु चाहे तो जितनी भी उदास हो मेरा फोन कॉल इग्नोर नहीं करोगी, ठीक है। इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाया। ये बात सुनकर अभिमन्यु बोला, अरे लेकिन अब किस बात को लेकर उदास है आपकी बेस्ट फ्रेंड। नंदिनी की तरफ देखते हुए अभिमन्यु ने उसे ही सवाल किया। नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप खुद ही पूछ लीजिएगा, आप दोनों तो यहाँ पर ही है ना, सिर्फ मैं ही वापस जा रही हूँ। अभिमन्यु और नंदिनी की बातें सुनकर इप्सिता ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी बातों के बीच वो क्या बोले। नंदिनी खुद आगे आकर उसे गले लगाते हुए बोली, अच्छा ठीक है ईशु, अब मैं चलती हूँ, बाय, चेक इन करने में भी समय लगेगा, और जीजू अगर आपको ईशु के साथ समय बिताना है तो आप उसके साथ समय बिता सकते हैं। ये बात सुनकर इप्सिता ने फिर से उसे घूरते हुए कहा, बाय नंदिनी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी, बस थोड़ा कम बोला करो। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, तो मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो यार। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्सिता के गाल पर किस किया और अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए कहा, बाय जीजू। नंदिनी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इप्सिता वहीं खड़ी रही जब तक नंदिनी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, फिर वो वहां से चली गई। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देख रहा था। इप्सिता के चेहरे की उदासी अभिमन्यु से देखी नहीं जा रही थी। अभिमन्यु इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, इप्सिता आप इतनी उदास क्यों हैं, अब तो शादी की डेट भी आगे बढ़ गई है। इप्सिता ने संजय की तरफ देखते हुए कहा, संजय अंटल कार निकालिए, हम घर चल रहे हैं। इप्सिता के इस तरह से इग्नोर करने पर अभिमन्यु को हैरानी हुई। वो इप्सिता के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, इप्सिता हम कुछ पूछ रहे हैं और हमें आपसे बात करनी है। इप्सिता ने रूखेपन से कहा, लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर इप्सिता एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगी, लेकिन वो पूरी तरह बाहर निकल पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन हमें आपसे बात करनी है और आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ लिया। पहली बार अभिमन्यु ने इतनी सख्ती से बात की जिसे देखकर इप्सिता थोड़ी सी हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, ये अभिमन्यु मेरे साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहे हैं, क्या हमने सच में थोड़ा ज्यादा ही रूखा व्यवहार कर दिया है, शायद हमें उन्हें इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी हम अपने माँ बाप का गुस्सा उन पर नहीं निकाल सकते। ये ख्याल आते ही उसने अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आपको जो भी बात करनी है हम जानते हैं शादी को लेकर ही होगी ना, और हम अभी शादी को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते, इसलिए हमारा हाथ छोड़िए आप। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी पकड़ और कसकर बनाई और उसे बगल में लाते हुए बोला, नहीं, हमें शादी से संबंधित बात नहीं करनी, अब आप हमसे बात करेंगी ना। इप्सिता चुप थी और कन्फ्यूजन के साथ अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर शादी के बारे में नहीं तो फिर अभिमन्यु को उससे किस बारे में बात करनी थी। इप्सिता चुप थी तो अभिमन्यु ने पूछा, आप हमें ये बताइए कि आखिर समस्या क्या है, क्या हुआ है ऐसा जो आप इतनी ज्यादा उदास हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा। अभिमन्यु इप्सिता की आंखों में दर्द महसूस कर पा रहा था और बोला, प्लीज इप्सिता बताइए हमें। इप्सिता की आंखों में आंसू भर गए थे। उसने नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, आपसे बात करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला, तो क्या बताएं हम आपको। उसकी मायूसी भरी बातें सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इप्सिता उसी उदासी से बोली, जो भी होना था वो हो चुका है, माँ बाप ने पहले ही सब कुछ तय कर दिया है, आपसे या किसी से भी बात करके अब कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर इप्सिता ज्यादा इमोशनल हो गई और आंसू गिरा ही था कि उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। अभिमन्यु ने उसे रोते देखकर कहा, एक बार आप हम पर भरोसा करके अपनी समस्या बताइए तो हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई समस्या नहीं है हमें। अभिमन्यु ने मन में सोचा, लगता है इप्सिता खुद से तो हमें अपने एग्जाम के बारे में नहीं बताएंगी। अभिमन्यु ने एकदम से कहा, हम जानते हैं आप अपने एग्जाम को लेकर परेशान है ना, हमारी होने वाली शादी की वजह से ही आपकी माँ आपको एग्जाम देने नहीं जाने दे रही, इसीलिए आप इतनी उदास हैं, राइट। एग्जाम की बात सुनकर इप्सिता हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और मन में सोची, ये अभिमन्यु को हमारे एग्जाम के बारे में कैसे पता चला, हमने तो इन्हें बताया नहीं। इप्सिता ने हैरान होकर अभिमन्यु से पूछा, आपको कैसे पता चला हमारे एग्जाम के बारे में। अभिमन्यु ने सहूलियत से कहा, ये बात जानना जरूरी नहीं है कि हमें कैसे पता चला और कैसे नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि आपको एग्जाम देने हैं या नहीं।
इप्सिता पूरी उत्साह के साथ बोली, ऑफ कोर्स देने हैं। लेकिन इप्सिता एग्जाम की बात सुनकर थोड़ी उत्साहित हो गई थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। क्रमशः